एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और शायद थोड़े मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, विषय है धर्म का दर्शन, मतलब फिलॉसफी ऑफ रिलीजन।
बिल्कुल, और इसके लिए हम जो किताब देख रहे हैं वो है टिम बेन की फिलॉसफी ऑफ रिलीजन।
ये किताब उन बड़े सवालों से जूझती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं।
जैसे
कि क्या ईश्वर है, और अगर है तो फिर दुनिया में इतना दुख इतनी पीड़ा क्यों है।
आस्था और तर्क का क्या क्या रिश्ता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, और ये सवाल आज के जमाने में तो और भी जरूरी हो गए हैं ना।
सही का, एक तरफ तो हमारी आस्थाएं हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास,
और दूसरी तरफ है विज्ञान, तर्क, लॉजिक, और अक्सर लगता है कि इनमें टकराव है। तो ये किताब इसी टकराव के बीच एक तरह से पुल बनाने की कोशिश करती है।
ये सिखाती है कि कैसे हम धार्मिक विश्वासों के बारे में भी मतलब थोड़ा साफ और व्यवस्थित तरीके से सोच सकते हैं।
हाँ, बिना एकदम भावनाओं में बह जाए या बिना किसी का अपमान किए।
अच्छी बात यह है कि किसी धर्म का प्रचार नहीं करती, नहीं खंडन, बस सोचने के औजार देती है।
तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, टिम बेन।
हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि वो कोई धर्मगुरु या धर्मशास्त्री टाइप के नहीं है।
सही, टिम बेन असल में एक जाने माने दार्शनिक हैं। उनका मुख्य काम तो मन का दर्शन, मतलब फिलॉसफी ऑफ माइंड, और कॉग्निटिव साइंस में है।
मतलब वो चेतना, सोच, दिमाग कैसे काम करता है, इन सब चीजों के एक्सपर्ट हैं।
जी, वो अभी ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा चुके हैं पहले।
उनकी खासियत है चेतना की प्रकृति को समझना, ये जो हमारा अनुभव करने का, महसूस करने का पहलू है, या फिर है क्या चीज।
तो फिर सवाल उठता है कि भाई, चेतना का एक्सपर्ट धर्म के दर्शन पर किताब क्यों लिख रहा है?
और यही उनकी खासियत है।
हाँ,
है ना,
चेतना, आत्मा, अनुभव, इन सब पर उनकी जो गहरी समझ है वो उन्हें आत्मा, मृत्यु के बाद जीवन, या फिर धार्मिक अनुभव जैसे विषयों को एक बिल्कुल अलग, एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने में मदद करती है।
उनका अप्रोच एकदम अलग है, वो ये नहीं मानते कि चलो आस्था से शुरू करते हैं।
और ना ही उनका मकसद है कि धर्म को गलत साबित करना है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक दार्शनिक की तरह काम करते हैं। उनका जोर रहता है स्पष्टता पर, तार्किक स्थिरता पर और संतुलित मूल्यांकन पर।
वो ये नहीं पूछते कि क्या मानना चाहिए,
बल्कि ये पूछते हैं कि अच्छा, जो माना जा रहा है क्या वो तार्किक रूप से कोहेरेंट है, क्या उसमें कोई अंदरूनी विरोधाभास तो नहीं। उनकी योग्यता उनके विश्लेषण में है।
तो ये किताब असल में करती क्या है, इसके अंदर क्या है?
देखिए, ये वेस्टर्न फिलॉसफी की एक बहुत पुरानी और लगातार चलने वाली शाखा है, धर्म का दर्शन।
ये किताब उसी का एक परिचय देती है,
उन बुनियादी सवालों को उठाती है जो सदियों से दार्शनिकों को मतलब
उलझाते रहे।
हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पढ़ने वालों को उन बड़े तर्कों, कॉन्सेप्ट्स और समस्याओं से परिचित कराया जाए जो धर्म की दार्शनिक जांच के केंद्र में रहे हैं।
ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं है कि पहले किसने क्या कहा?
नहीं, ये सीधे मुद्दों पर बात करती है।
जैसे
ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या है,
उनकी बनावट क्या है, कहाँ कमजोरियां हैं,
और फिर ईश्वर के जो गुण माने जाते हैं जैसे सर्वशक्तिमान होना, सब कुछ जानना, क्या इनमें ही कोई विरोधाभास छिपा है।
और सिर्फ ईश्वर ही नहीं, धर्म, नैतिकता, विज्ञान, तर्क, इनके बीच क्या रिश्ते हैं? बड़े जटिल रिश्ते हैं ये।
बिल्कुल, ये किताब एक तरह की बौद्धिक यात्रा पर ले जाती है। शुरुआत होती है परिभाषाओं को साफ करने से।
हाँ, जैसे दार्शनिक जब ईश्वर कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है?
आम तौर पर एक ऐसी सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और परम दयालु है।
फिर ये हमें उन क्लासिक तर्कों से मिलवाती है जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाते हैं।
जैसे
वो कॉस्मोलॉजिकल तर्क कि भाई ब्रह्मांड का कोई तो कारण होना चाहिए,
या फिर टीलियोलॉजिकल तर्क कि दुनिया में जो डिजाइन दिखता है उसका कोई डिजाइनर होना चाहिए।
लेकिन मजे की बात यह है कि बेन सिर्फ तर्क नहीं बताते, वो साथ ही साथ उनकी तीखी आलोचनाओं को भी सामने रखते हैं।
हाँ, तो ये एक तरफा मामला नहीं है, आपको दोनों पक्ष पता चलते हैं।
और फिर आता है वो सबसे मुश्किल सवाल, बुराई की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईविल।
उफ,
अगर ईश्वर इतना अच्छा और शक्तिशाली है तो दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों?
ये किताब इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लेती है और इसके अलावा आस्था और तर्क, चमत्कार, धर्म और विज्ञान,
धर्म और नैतिकता, आत्मा, मृत्यु के बाद जीवन, इन सभी पर यह दार्शनिक नजरिए से विचार करती है।
और पूरी किताब में बेन एक निष्पक्ष गाइड की तरह रहते हैं। वो ये नहीं बताते कि क्या सोचना है,
बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना है।
हाँ, विभिन्न पक्ष क्या कहते हैं, उनके तर्क क्या हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, ये सब बताते हैं। लक्ष्य बहस जीतना नहीं है,
लक्ष्य है समझ बढ़ाना, ताकि पढ़ने वाला खुद सोच समझकर अपने नतीजे पर पहुंचे।
चलिए अब कुछ मुख्य अध्यायों और उनके तर्कों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कोशिश करते हैं कि ये लिस्ट जैसा न लगे।
ठीक है, तो पहला अध्याय तो एक तरह से भूमिका बांधता है। धर्म का दर्शन क्या है, ये धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी से कैसे अलग है,
और यही शास्त्रीय अस्तिकता मतलब क्लासिकल थियोज़म की नींव रखी जाती है। वही ईश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयालु है।
और देखो, तुरंत पहेलियां शुरू हो जाती हैं, जैसे वो पत्थर वाला विरोधाभास।
अरे हाँ, क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद न उठा सके?
अगर हाँ तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा, अगर नहीं तो भी वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा। ये दिखाता है कि इन गुणों को ठीक से परिभाषित करना भी कितना मुश्किल काम है।
बिल्कुल।
फिर किताब आगे बढ़ती है ईश्वर के अस्तित्व के तर्कों की ओर। पहला बड़ा तर्क है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट।
इसका मूल आइडिया तो काफी सीधा लगता है ना?
हाँ, मतलब ये कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो फिर पूरे ब्रह्मांड का भी कोई परम कारण होना चाहिए।
और वो परम कारण ईश्वर है।
इसके कई रूप हैं, जैसे एक कलाम तर्क है जो कहता है कि जो भी चीज शुरू होती है उसका कोई कारण होता है। ब्रह्मांड शुरू हुआ इसलिए उसका कोई कारण होना चाहिए।
एक्विनास कहते हैं कि कारणों की अनंत श्रृंखला नहीं हो सकती, पीछे जाते जाते कहीं तो रुकना पड़ेगा, एक पहला कारण जरूरी है।
और लाइबनिस का सवाल था कि भाई कुछ होने के बजाय कुछ क्यों नहीं है, शून्य क्यों नहीं है? इसका जवाब वो एक आवश्यक सत्ता में पाते हैं जो अपना आप में मौजूद है। सुनने में तो ये तर्क काफी दमदार लगते हैं, पहली बार में लगता है कि हाँ बात तो सही है,
लेकिन फिर आलोचनाएं आती हैं। जैसे अगर हर चीज का कारण है तो फिर ईश्वर का कारण क्या है?
और क्या कारणों की अनंत श्रृंखला वाकई असंभव है, कौन कह सकता है?
और आजकल बिग बैंग जैसी वैज्ञानिक खोजें हैं, क्या वो ईश्वर की जरूरत खत्म नहीं कर देती? ये सवाल इन तर्कों को चुनौती देते हैं।
बिल्कुल। इसके बाद आता है टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट यानी डिजाइन का तर्क।
ये कहता है कि प्रकृति में, खासकर जीवों में, इतनी जटिलता है, इतना उद्देश्य दिखता है मानो किसी ने सोच समझ कर डिजाइन किया हो।
वो विलियम पेले की मशहूर घड़ीसाज वाली मिसाल।
हाँ, कि अगर रेगिस्तान में या समुद्र तट पर एक घड़ी मिले तो हम फौरन मान लेते हैं कि इसे किसी ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बन सकती।
तो फिर ब्रह्मांड जो घड़ी से कहीं ज्यादा जटिल है, क्या उसका कोई निर्माता नहीं होगा?
इसका एक आधुनिक रूप है फाइन ट्यूनिंग तर्क, कि भाई फिजिक्स के जो नियम हैं, जो स्थिरांक हैं, वो जीवन के पनपने के लिए इतने इतने सटीक कैसे हैं? क्या ये महज एक संयोग है?
लेकिन यहाँ भी दिक्कतें हैं। डेविड ह्यूम ने कहा कि ब्रह्मांड कोई मशीन जैसा थोड़ी है, तो ये घड़ी वाली उपमा कमजोर है।
और सबसे बड़ी चुनौती तो आई डार्विन के विकासवाद से।
हाँ, क्योंकि उसने दिखाया कि जटिलता बिना किसी डिजाइनर के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन से भी आ सकती है।
ये बहस आज भी चलती है, खासकर फाइन ट्यूनिंग को लेकर। फिर आता है सबसे अजीब, सबसे अमूर्त तर्क, ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट।
ये बाहर की दुनिया के सबूतों पर निर्भर नहीं करता।
नहीं, ये ईश्वर की परिभाषा या उसके कॉन्सेप्ट से ही उसके अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करता है।
सेंट एंसेल्म ने कहा, ईश्वर वो है जिससे महान किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती।
अब सोचो, अगर ये सत्ता सिर्फ हमारे मन में मौजूद होती तो ये महानतम नहीं होती।
क्यों? क्योंकि असलियत में मौजूद होना सिर्फ मन में मौजूद होने से ज्यादा महान है।
इसलिए इस परिभाषा के अनुसार ईश्वर को असलियत में मौजूद होना ही चाहिए।
ये तर्क तो सिर घुमा देता है, ऐसा लगता है जैसे शब्दों का खेल हो रहा हो।
और इसकी आलोचना भी कुछ ऐसी ही है। गोनीलो ने कहा, अरे भाई, इस तर्क से तो हम एक सबसे उत्तम काल्पनिक द्वीप के अस्तित्व को भी साबित कर सकते हैं।
हाँ हाँ, और कांट की वो मशहूर आलोचना की अस्तित्व कोई गुण नहीं है। किसी चीज के बारे में ये बताना कि वो मौजूद है उसकी विशेषता नहीं बताता।
सही कहा। फिर भी ये तर्क दार्शनिकों को आज भी मतलब सोचने पे मजबूर करता है।
इन तर्कों के बाद किताब उस मुद्दे पर आती है जो शायद ईश्वर में विश्वास करने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
बुराई की समस्या,
प्रॉब्लम ऑफ ईविल।
अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और परम दयालु भी है, तो फिर दुनिया में इतनी भयानक पीड़ा, इतना अन्याय, इतना दुख क्यों है?
बच्चों का कैंसर, भूकंप, युद्ध, लिस्ट खत्म नहीं होती। ये सवाल सिर्फ तार्किक नहीं है, ये बहुत भावनात्मक भी है। इसका एक रूप है तार्किक समस्या। क्या एक भला ईश्वर और इतनी बुराई, क्या ये दोनों एक साथ होना संभव भी है? क्या ये तार्किक रूप से कोहेरेंट है?
और दूसरा रूप है प्रमाणिक समस्या। चलो मान लिया कि तार्किक रूप से संभव है, लेकिन दुनिया में जिस तरह की और जितनी बुराई है, क्या वो एक अच्छे ईश्वर के अस्तित्व को असंभाव्य नहीं बना देती?
इसके जवाब में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें थियोडिसी कहते हैं।
हाँ, जैसे एक है फ्री विल डिफेंस, कि ईश्वर ने हमें चुनने की आजादी दी और बुराई उसी आजादी का नतीजा है।
या फिर सोल मेकिंग थियोडिसी, कि ये दुनिया एक तरह की आत्मा को गढ़ने की जगह है और दुख हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करते हैं।
लेकिन ये जवाब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करते हैं ना?
बिल्कुल नहीं। क्या हमारी आजादी से भूकंप आते हैं, बीमारियां फैलती हैं?
और क्या किसी मासूम बच्चे का भयानक दुख दूसरों की सोल मेकिंग के लिए उचित ठहराया जा सकता है? ये सवाल आसानी से हल नहीं होते।
इसके बाद की बात आस्था और तर्क के रिश्ते पर आती है। क्या बिना सबूत के मानना ठीक है?
एविडेंशियलिज्म कहता है कि नहीं, अपर्याप्त सबूत पर विश्वास करना गलत है।
फीडिज्म कहता है कि आस्था तर्क से परे है या उसके खिलाफ है।
पास्कल का दांव, पास्कल्स वेजर, एक बड़ा मजेदार व्यवहारिक तर्क है। वो कहता है कि ईश्वर पर दांव लगाना फायदे का सौदा है, मानो या ना मानो, मानने में ज्यादा फायदा है।
और रिफॉर्म्ड एपिस्टेमोलॉजी प्लांटिंगा का तर्क है कि ईश्वर में विश्वास बुनियादी हो सकता है, जैसे हम बाहरी दुनिया के अस्तित्व में बिना किसी तर्क के विश्वास करते हैं।
और फिर धार्मिक अनुभव की बात होती है। क्या किसी का व्यक्तिगत अनुभव, कोई विजन या एहसास, क्या वो विश्वास का तार्किक आधार बन सकता है?
या फिर उनके मनोवैज्ञानिक या न्यूरोसाइंटिफिक स्पष्टीकरण ज्यादा मजबूत हैं?
फिर चमत्कारों पर चर्चा होती है। चमत्कार यानी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन।
डेविड ह्यूम का वो क्लासिक तर्क याद है कि किसी चमत्कार का सबूत हमेशा प्रकृति के नियम के सबूत से कमजोरी होगा। नियम का सबूत तो हजारों लाखों बार देखा गया है।
सही। और धर्म और विज्ञान के रिश्ते पर भी बात होती है। क्या वे हमेशा दुश्मन रहे हैं?
या क्या वे अलग अलग डोमेन हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं?
या फिर क्या वे एक दूसरे को कुछ दे सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं?
और फिर नैतिकता का बड़ा सवाल, क्या नैतिकता के लिए ईश्वर जरूरी है?
डिवाइन कमांड थियरी कहती है हाँ, जो ईश्वर का आदेश है वही नैतिक रूप से सही है।
लेकिन फिर वो यूथिफ्रो दुविधा आ जाती है।
हाँ, क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर उसका हुक्म देता है, या ईश्वर उसका हुक्म इसलिए देता है क्योंकि वो चीज अपने आप में अच्छी है?
अगर पहला वाला सच है तो नैतिकता मनमानी हो जाती है, ईश्वर कुछ भी आदेश दे सकता था।
और अगर दूसरा वाला सच है तो नैतिकता ईश्वर से स्वतंत्र हो गई, वो ईश्वर के आदेश पर निर्भर नहीं रही।
और अंत में आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन पर विचार, क्या हम सिर्फ ये भौतिक शरीर हैं या कोई अभौतिक आत्मा भी है?
डेकार्त का डुअलिज्म कहता है कि हाँ, शरीर और आत्मा अलग है और आत्मा शायद शरीर के बाद भी रह सकती है।
लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये अभौतिक आत्मा भौतिक शरीर से इंटरैक्ट कैसे करती है? ये एक बड़ी पहेली है।
और फिजिकलिज्म कहता है कि नहीं, मन या चेतना दिमाग की ही उपज है, दिमाग खत्म तो सब खत्म।
तो आप देख सकते हैं ये किताब लगभग हर उस बड़े दार्शनिक सवाल को छूती है जो धर्म से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है, बहुत व्यापक है।
बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें या कह सकते हैं संदेश उभर कर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है तर्क की भूमिका।
हाँ, ये किताब बार बार दिखाती है कि धार्मिक विश्वासों पर भी तर्क, विश्लेषण और सबूतों की कसौटी लागू की जा सकती है
और की जानी चाहिए। ये आस्था को तर्क के दायरे से बाहर नहीं मानती।
दूसरा, अवधारणाओं की जटिलता। हमने देखा कि ईश्वर के वो गुण जिन्हें हम आसानी से मान लेते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, उनको भी ठीक से परिभाषित करना कितना मुश्किल है
और उनमें कैसे विरोधाभास छिपे हो सकते हैं। मतलब धर्म से जुड़े सवालों के जवाब अक्सर सीधे हाँ या ना में नहीं होते, बहुत परतें होती हैं उनमें।
तीसरा, बुराई की समस्या की केंद्रीयता। यह सिर्फ एक दिमागी पहेली नहीं है।
नहीं, ये ईश्वर में विश्वास के लिए शायद सबसे बड़ी भावनात्मक और बौद्धिक चुनौती है। ये ईश्वर की अच्छाई और दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है उसके बीच के तनाव को एकदम सामने लाती है।
भारत में भी हम रोजमर्रा में इतना दुख और अन्याय देखते हैं, ये सवाल बहुत गहरा लगता है।
चौथा, सबूतों की अस्पष्टता और तर्कों का बदलता स्वरूप। चाहे वो दुनिया में डिजाइन का सबूत हो या किसी का व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव।
इनके सबूतों की अक्सर कई तरह से व्याख्या की जा सकती है।
हाँ, इसीलिए तो ये बहसें सदियों से चली आ रही हैं, और ये तर्क भी स्थिर नहीं है, ये समय के साथ बदलते रहते हैं, आलोचनाओं के जवाब में विकसित होते हैं।
और पांचवा, नैतिकता की संभावित आजादी। एक मजबूत दार्शनिक पक्ष ये भी है कि नैतिकता सिर्फ धर्म या ईश्वर पर ही निर्भर हो, ये जरूरी नहीं है।
तर्क, सहानुभूति, समाज की जरूरतें, ये भी नैतिकता का आधार बन सकती हैं। ये विचार खासकर भारत जैसे विविधता भरे समाज में, जहां अलग अलग नैतिक परंपराएं साथ रहती हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।
किताब में कई ऐसे विचार हैं जो इन बहसों का सार पकड़ते हैं, जैसे वो ऑन्टोलॉजिकल तर्क का सार।
हाँ, ईश्वर वह है जिससे महान किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। चूंकि असल में होना सिर्फ मन में होने से बेहतर है, इसलिए ईश्वर को असल में होना ही चाहिए। ये तर्क की सीमाओं और उसकी ताकत दोनों को दिखाता है ना।
या चमत्कारों पर ह्यूम का वो संदेह, एक समझदार इंसान अपने विश्वास को सबूतों के आधार पर तौलता है। प्रकृति के नियमों का सबूत लगातार मिलने वाला अनुभव है, जबकि किसी चमत्कार का दावा एक अकेला वाक्य होता है। इसलिए चमत्कार का दावा कभी भी नियम के सबूत से ज्यादा वजनदार नहीं हो सकता।
ये आज के वैज्ञानिक युग में कितना प्रासंगिक लगता है। जब भी कोई अलौकिक दावा होता है, ह्यूम का ये तर्क एकदम याद आता है।
बिल्कुल, और नैतिकता पर वो यूथिफ्रो दुविधा।
क्या कोई काम इसलिए अच्छा है क्योंकि ईश्वर उसका हुक्म देता है, या ईश्वर उसका हुक्म इसलिए देता है क्योंकि वो काम अपने आप में अच्छा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नैतिकता का असली स्रोत क्या है, कोई बाहरी आदेश या हमारा अपना विवेक और तर्क।
बुराई की समस्या का वो प्रामाणिक पहलू भी बहुत असरदार है। भले ही हम मान लें कि ईश्वर के पास दुख की इजाज़त देने का कोई तार्किक कारण हो सकता है, लेकिन दुनिया में दुख का जो पैमाना है और जिस तरह वो देवजा लगता है, वो एक भले ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करता है।
ये अमूर्त तर्कों से हटकर असलियत पर, वास्तविक पीड़ा पर जोर देता है,
और खुद बेन के नजरिए को दिखाता एक विचार।
हाँ, धर्म का दर्शन विश्वासों को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि उन विश्वासों के सच या गलत होने का मतलब क्या होगा, उनके तार्किक नतीजे क्या होंगे। मतलब जोर समझ बढ़ाने पर है, बहस जीतने पर नहीं।
तो भाई, इन सब दिमागी कसरतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? कुछ है भी या बस फिलॉसफी की बातें हैं?
नहीं नहीं, फायदा है। पहला तो सीधा है, बेहतर सोचने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स।
हाँ, तर्कों को परखना, कमजोरियों को पहचानना, सबूतों का मूल्यांकन करना, ये हुनर तो हर जगह काम आते हैं। चाहे आप खबरें पढ़ रहे हो, या कोई विज्ञापन देख रहे हो, या किसी से बहस कर रहे हो।
दूसरा, अपने विश्वासों को लेकर ज्यादा स्पष्टता और विनम्रता, चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, या अज्ञेयवादी। ये किताब आपको अपने नजरिए की ताकतों और कमजोरियों दोनों को समझने में मदद करती है।
इससे एक बौद्धिक विनम्रता आती है, ये एहसास कि भाई, इन बड़े सवालों के जवाब आसान नहीं है, मेरे पास सारे जवाब नहीं है।
तीसरा, सम्मानजनक बातचीत का हुनर। जब हम धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ भावनाओं या अपनी आस्था के दम पर नहीं, बल्कि तर्क और समझ के साथ बात करना सीखते हैं,
तो हम उन लोगों से भी बेहतर संवाद कर सकते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग सोचते हैं। आजकल इसकी कितनी जरूरत है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में।
चौथा, नैतिक फैसलों में मदद। ये समझना कि नैतिकता सिर्फ धार्मिक आदेशों पर ही नहीं टिकी है, बल्कि तर्क, सहानुभूति और मानवीय मूल्यों पर भी आधारित हो सकती है, ये हमें ज्यादा समावेशी बनाता है।
हम एक साझा नैतिक जमीन तलाश सकते हैं, भले ही हमारे धार्मिक विश्वास अलग अलग हों।
और पांचवा, विज्ञान और धर्म की बहस को बेहतर समझना। ये किताब हमें उस सीधी सादी कहानी से आगे ले जाती है कि विज्ञान और धर्म हमेशा लड़ते ही रहते हैं।
हाँ, ये दिखाती है कि उनका रिश्ता ज्यादा जटिल है, उसमें कई परतें हैं, कभी तनाव है, कभी सहयोग, कभी दोनों अलग अलग काम करते हैं।
बड़ा सबक है वो ये है कि धर्म जैसे गहरे और अक्सर जज्बाती लगने वाले सवालों पर भी ठंडे दिमाग से तर्क के साथ सोचा जा सकता है।
और ऐसा करना डरावना नहीं है।
नहीं, बल्कि ये ज्ञान बढ़ाने वाला हो सकता है। ये सोचने के औजार देती है जो सबके काम आ सकते हैं, चाहे उनका अपना विश्वास कुछ भी हो।
मेरे लिए सबसे कह सकते हैं आश्चर्यजनक बात ये रही कि सदियों पुराने ये तर्क आज भी कितने जीवंत हैं। ऐसा नहीं कि बस ये इतिहास की बात
है।
और कैसे नई वैज्ञानिक खोजें या नए दार्शनिक विचार इन्हें लगातार, मतलब, नया रूप दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ये दिखाता है कि इंसान इन बड़े सवालों से हमेशा जूझता रहा है और शायद जूझता रहेगा।
कोई आसान जवाब नहीं है,
शायद सवाल पूछते रहना ही सबसे जरूरी है।
संक्षिप्त में कहें तो ये किताब हमें चुनौती देती है। चुनौती देती है कि हम अपने गहरे से गहरे विश्वासों को भी तर्क की कसौटी पर परखें, स्पष्टता से सोचें और मुश्किल सवालों का हिम्मत से सामना करें। ये शायद हमें बेहतर विचारक और ज्यादा समझदार इंसान बनने में मदद कर सकती है।
श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी बातचीत में आपको कौन सा तर्क या कौन सी चुनौती, जिसे वो बुराई की समस्या या वो ऑन्टोलॉजिकल तर्क या नैतिकता वाली दुविधा, कौन सी बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई? इन सवालों पर दार्शनिक नजरिए से सोचने पर क्या आपके अपने विचारों में कोई फर्क महसूस होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।